अभिव्यक्ति के प्रसाधन। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि को भाषा का माध्यम ग्रहण करना पड़ता है। कभी वे अनुभूतियां इतनी सशक्त होती हैं कि वाणी के माध्यम से अपने आप फूट पड़ती हैं और कला के समस्त उपकरण अनायास आ जुटते हैं। कभी यह भी होता है कि कला के पूर्व निश्चित उपादान अनुभूतियों अथवा संयोग संवेगों के प्रखर प्रवाह को संभाल नहीं पाते, वे स्वयं उसमें बहकर बिखर जाते हैं, किंतु अनुभूतियाँ अपना नया आकार ग्रहण कर लेती हैं। ऐसा प्रायः रोमांटिक कवियों के साथ होता है, इसलिए रोमांटिक कवियों ने परंपरागत बंधनों में बंधना कभी स्वीकार नहीं किया, किंतु एक विशेष रूपाकार को स्वीकार कर चलने वाले कवि अपेक्षाकृत अधिक सचेत होते हैं। फलस्वरूप उन्हें कलात्मक निर्मिति का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिहारी में जो कलात्मक सफाई, काट छाट, साज सज्जा दिखाई देती है, वह उनकी सजगता और सतर्कता का परिचायक है। निराकार अनुभूतियों को आकार देने के लिए कवि उनका समूर्तन करता है, अर्थात उन्हें चित्र रूप में प्रस्तुत करता है। इस समूर्तन के लिए वह नपी तुली रेखाओं, आवश्यक रंगों, समुचित परिप्रेक्ष्य का पूरा ध्यान रखता है। काव्यगत समूर्तन बाह्याकार का अनुकरण नहीं होता, वह मुख्यतः कवि की कल्पना और अनुभूतियों से निर्मित होता है। बाह्य जगत के रूप विन्यास से प्रभावित होकर कवि जब उसे भाषा में उतारने का प्रयास करता है, तो उसे स्वतः नए सौंदर्य बोधात्मक संदर्भ मिल जाते हैं, जो विषय और भावों को एक प्रतीकात्मक अर्थ भी प्रदान करते हैं। समूर्तन की कोषगत मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, इमेज इज अ रिवाइवल रिप्रोडक्शन बाय मेमोरी इन दिस mind of some sensuous experience undergone in the past, including the visual, auditive, tactile and other impression associated with it. अर्थात भूतकाल के चाक्षुष, श्रवणात्मक संस्पर्शात्मक तथा अन्य अनेक प्रभावों के संयोग से जिन स्मृत्यात्मक अनुभूतियों को पुनः स्थापित किया जाता है, उन्हें समूर्तन की संज्ञा दी जाती है। पर कला में बाह्य जगत से गृहित भूतकालीन स्मृतियों का पुनः सृजन होता है। इसी से तो कहा जाता है कि कला प्रकृति के अभावों की पूर्णता है। इस पुनः सृजन में अनेक प्रकार के समूर्तनों, चाक्षुष, श्रवणात्मक, संस्पर्शात्मक आदि को आवश्यकता अनुसार सम्मिश्रित कर लिया जाता है। इसके सुंदर और औचित्यपूर्ण सम्मिश्रण से समूर्तनों की प्रभाव उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ जाती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श सभी का समावेश काव्य को अत्यधिक उदात्त बना देता है। आश्रय और आलंबन की अनेकानेक चेष्टाओं और अनुभवों का चित्र समूर्तन विधान के ही अंतर्गत आएगा। साधारणतः काव्य चित्रों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लक्षित चित्र श्रेणी और उपलक्षित चित्र श्रेणी। मुख्यतया बाह्य रेखाओं पर आधारित रहने के कारण लक्षित चित्रों को रेखा चित्र की भी अभिधा दी जा सकती है। रेखा चित्रों में आलंबन के रूप में सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है। काव्य में उपलक्षित चित्रों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन चित्रों में कवि अपने घनीभूत भावों को अप्रस्तुतों के सादृश्य विधान द्वारा बहुत सरस और मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इनके अतिरिक्त विशेषणों और शब्द ध्वनियों से भी भावों का समूर्तन किया जाता है। यहाँ पर हम विशेषणों और शब्दावलियों पर आधारित समूर्तनों की विवेचना करेंगे। इसके पश्चात लक्षित तथा उपलक्षित चित्रों का विश्लेषण किया जाएगा। भावोद्दीपन में उपयुक्त और चित्रोपम विशेषणों का चयन काव्य शिल्प का विशिष्ट उपकार है। सामान्य विशेषण बहुत कुछ अस्पष्ट और अमूर्त रहने के कारण हमारी भावना को आकार नहीं दे पाते। काव्योचित विशेषण इंद्रिय गोचर मूर्त रूप की सृष्टि से अधिक समर्थ होते हैं। वे अस्पष्ट रूप से विशेष क्रिया, अर्थ या रुचि का द्योतन करते हैं। ये अपने आप में विशेष के व्यापार नहीं है, इनके मूल में कवि का अपना दृष्टिकोण भी निहित है। वस्तु के प्रति अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ही विशेषण का चुनाव किया जा सकता है। उसका पर्यायवाची विशेषण कवि का अभिप्रेत अर्थ नहीं दे सकता। इस तरह के उपयुक्त विशेषणों के चुनाव में बिहारी बेजोड़ है। नीचे कुछ विशेषणों के उदाहरण दिए गए हैं, जिनका चुनाव बिहारी बोधनी के आधार पर किया गया है। बंक विलोकनी, दोहा नंबर 46, अनियारे नयन, दोहा नंबर 86, अहेरी नयन, दोहा नंबर 127, ललचौही चखनी, दोहा नंबर 236, लगोहे नौन, नैन, दोहा नंबर 403, अलसोहे नैन, दोहा नंबर 411, तिलोछे नैन, दोहा नंबर 425, निगोड़े नैन, दोहा नंबर 458, उतंग खड़े उरोजनी, दोहा नंबर 568, सुरंग कुसुम्भी चुनरी, दोहा नंबर 218। बिहारी ने आंखों के लिए प्रायः एक ही विशेषण का प्रयोग किया है। ऐसा करने के मूल में दो कारण दिखाई पड़ते हैं। एक तो बिहारी सजग कलाकार होने के नाते शब्दों को खूब जानबूझकर प्रयोग करते हैं। दूसरे, उनके दोहों की संकीर्ण सीमा में बहुत से विशेषण आ भी नहीं सकते थे। आकारमूलक विशेषण बिहारी में कम ही मिलेंगे। इनके विशेषणों को क्रियामूलक कह सकते हैं। अपने विशेष्यों के स्वभाव या क्रिया को अंकित करने के लिए उन्होंने क्रिया विशेषणों का प्रयोग अधिक किया है। पर इन विशेषणों के मूल में बिहारी की अपनी मनोवृत्ति भी अनुसूत है। ललचौहे, लगौहे, अलसौहे आदि विशेषण विशेष्य के विशेष स्वभाव के साथ ही यह भी सूचित करते हैं कि बिहारी का प्रेम मुख्यतः क्रीड़ात्मक था। घन आनंद के विशेषण बिहारी के विशेषणों में सर्वथा भिन्न है। त्रिसित चखनी, अखियां दुखदाई में कवि की मनोदशा का व्यथापूर्ण चित्र अंकित हुआ है। मुक्तकों में प्रायः देखा जाता है कि परिस्थिति विशेष में आश्रय की कल्पना करनी पड़ती है। विशेषणों में जिस चित्रोपमता का विधान किया जाता है वह बहुत कुछ आश्रय के दृष्टिकोण का, इसे कवि का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, परिचायक होता है। ध्वनि चित्र परिवेश निर्माण के निमित्त काव्य में ध्वनि चित्रों का विशेष महत्व है। कविता और कथा साहित्य में ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा उत्तेजनात्मक प्रतिध्वनियां पैदा की जाती है। काव्य में प्रतिध्वनियां मूलतः संवेगों पर चोट करती है और कथा साहित्य में बाह्य यथार्थ का बोध कराती है। कविता में इनकी गूंज का महत्व है तो कथा साहित्य में इनकी चित्रात्मक शक्ति का। ऋतिकालीन कवियों ने प्रायः तीन प्रकार की शब्द ध्वनियों का प्रयोग किया है, रणनात्मक, अनुकरणात्मक, तीसरा व्यंजक। प्रथम शब्द ध्वनि सर्वाधिक मुखर और सबसे कम व्यंजक है। दूसरी स्थिति पहली और तीसरी की मध्यवर्तनी है। रति के विशिष्ट प्रसंगों में श्रुति मधुर ध्वनियों की रणनात्मकता शोभा देखिए। झांझरिया झनकैनी खरी खन गएंगी, चूरी चनको तन तोरे। ये दास की पंक्तियां हैं। झिल्लिन लो झहनाई के किंकिन बोले सुखी सुख को सुख दैनी, यो पिछियान बजावत बाल मराल के बालनी ज्यो मृगनैनी। ये तोस की पंक्तियां हैं। पर बिहारी की रणनात्मक ध्वनियां इतना शोर नहीं मचाती, वे अपेक्षाकृत संयमित और व्यंजकतापूर्ण हैं। पहला, छकी रसाल सौरभ सनय मधुर माधुरी गंध, ठौर ठौर झौरत झेपत भौर भौर मधुबंध। दूसरा, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। झौरत झपत तथा झौर झौर से भवरों का पागल होकर पुष्प गंध की ओर आकृष्ट होना, दौड़ना, गिर पड़ना बहुत ही अच्छी तरह व्यंजित हो उठा है। इसी प्रकार दोहे में रनित और घंटावली शब्द भी ध्वन्यात्मक है, जो एक परिवेश विशेष का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ है। इस माध्यम से संस्कृत के कवियों ने भी बहुत सुंदर वातावरण निर्माण किए हैं। भवभूति का एक उदाहरण देखिए। गुंज गुंजत कुंजकुटी कौशिक घटा घुटकार संवेलित, क्रंदत फेर वचंडात कृति भूत भृत प्रागभारभि मेष्टते, अंतः किर्ण करंग परत रत सरोधी कुलम कस श्रोतो निर्गम घोष घर घर वा पारिस मासमना पारे शमशानम सरित। इसमें शमशान का वातावरण अपनी पूर्ण भयंकरता में चित्रित हो उठा है। छायावादी कवियों में निराला और पंत ने ध्वन्यात्मक शब्दों से रसात्मक वातावरण का बहुत सुंदर निर्माण किया है। अनुरणनात्मक शब्द ध्वनि का एक उदाहरण देखिए। रुक्यो साकरे कुंज मग करत झांझी झुकरात, मंद मंद मारुत तुरंग खूंदनी आवत जात। झांझ और झुकरात शब्द शरारत और झोंके का व्यंजनात्मक चित्र उपस्थित करते हैं। तीसरे प्रकार में वे छंद हैं जो नाद तत्व द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, लह लहाती तन तरुनई चली लगी लौ लफी जाए, लगय लंक लोयन भरी लोयन लेत लगाए। हरी भरी खेत को हवा और धूप में हिलते डोलते और चमकते देखकर लोग कहते हैं कि खेत खूब लहलहा रहे हैं। तरुणाई के प्रसंग में इसके मुख्यार्थ का बाधा होता है और लक्षणा के सहारे इससे स्वस्थ प्रसन्न और मादक यौवन की अर्थ प्रतीति होती है। इस तरह देव के उमरड्यो परत रूप में लक्ष्यार्थ द्वारा रूपाधिक्य का इंद्रग्राही चित्र उपस्थित किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ऐसे शब्दों का विशेष महत्व है। रीति कवियों ने अपने काव्य को अनेक प्रकार से अलंकृत किया है। अलंकृति को अलग करके इन काव्यों का अध्ययन बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। इसके लिए कवियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वह युग का धर्म था। इस अलंकृति को उस समय के किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, चित्र में, वास्तुकला में, संगीत में। यदि यह कहा जाए कि उस समय का सारा जीवन अलंकृतिमय हो चुका था तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। अतः यह स्वाभाविक था कि जीवन की सहज स्फूर्ति खो जाती। काव्य के लिए भी यही सत्य है। इस अलंकृति का परिणाम यह हुआ कि रीति काव्यों में अनेक मनोरम चित्रों की अवतारणा हो गई। यों तो चित्रमयता भाषा का सहज धर्म है, पर चित्रों की इतनी बहुलता शायद ही और कहीं दिखाई पड़े। चित्रों के अतिरिक्त ध्वनि और अलंकार का समावेश भी प्रसाधन के रूप में इन्होंने किया है। इसलिए बिहारी के काव्य प्रसाधन का विवेचन करने के लिए भी हमें उन्हीं उपकरणों का ध्यान रखना होगा। पीछे लक्षित चित्र योजना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट इमेजरी, और उपलक्षित चित्र योजना फिगरेटिव इमेजरी की बात कर आए हैं। लक्षित चित्र योजना वह है जो सहज ढंग से लक्षित हो जाती है। इसमें प्रधानतया रेखा और रंगों का प्रयोग होता है। उपलक्षित चित्र योजना संबंध सादृश्य मूलक अलंकारों से है। वह अपेक्षाकृत अधिक गूढ़ और व्यंजक होती है। लक्षित चित्र योजना रेखा चित्र केवल स्थूल चाक्षुष चित्र नहीं है, उसमें शब्द, स्पर्श, गंध, रस को भी समाविष्ट समझना चाहिए। काव्य में केवल चाक्षुष चित्र का, जिसमें शब्द, स्पर्श आदि का समावेश नहीं होता है, विशेष मूल्य नहीं आंका जाता। ऐसे चाक्षुष चित्र प्रायः जड़ और मोटे रूप में वस्तुमुखी होते हैं और वे सूक्ष्म इंद्रिय बोध को संतुष्ट करने में प्रायः असक्त दिख पड़ते हैं। रेखा चित्रों में जिन वस्तुओं, मुद्राओं अथवा भंगिमाओं को अंकित किया जाता है, उन्हें इतना वास्तविक नहीं होना चाहिए कि कला में उनकी गणना ही ना हो सके। वे सभी वास्तविकता का भ्रम ही पैदा करती हैं। इसे और स्पष्ट शब्दों में यूं कहना होगा कि वस्तुतः कलात्मक चित्र वास्तविकता के किसी न किसी नए पक्ष का स्पर्श करते हैं। वास्तविकता का यह नया पक्ष कवि की रुचि, संस्कृति आदि से अच्छी तरह संबद्ध होता है। इन चित्रों से उसकी उद्देश्यता पर भी प्रकाश पड़ता है, पर उनकी सफलता इसमें नहीं है कि वे किन उद्देश्यों को प्रकट करते हैं, बल्कि इसमें है कि वे किस सीमा तक पाठकों के संवेदना को जगाते अथवा उनके संवेगों को तीव्र बनाते हैं। कुछ रेखा चित्रों को देखिए। कंज नयनी मंजन किए बैठी ब्यौरती बार, कच अंगूरिन बिच डिठी दय चितवती नंद कुमार। इस चित्र में 5 रेखाओं का प्रयोग किया गया है। कंज नयनी मंजन किए बैठी ब्यौरती बार, कच अंगूरिन बिच डिठी दय और चितवती नंद कुमार। ये सभी रेखाएं चित्र को पूर्णता प्रदान करती है। एक विशेष संदर्भ के अनुरूप अर्थपूर्ण उपकरणों को चुन लिया गया है। अपेक्षित उपादानों का कुशलतापूर्वक चयन और उनका सुरुचिपूर्ण सगुंफन बिहारी के चित्रों की कलागत विशेषता है। ये दोनों बातें बिहारी के प्रायः प्रत्येक चित्र में मिलेंगी। कलागत चित्र और वास्तविकता में अंतर होता है। पहले में वह कलागत सत्य का उद्घाटन होता है और दूसरे में वैज्ञानिक सत्य का। कलागत सत्य में कलाकार की अपनी दृष्टि निहित होती है। इसकी दूसरी विशेषता यह होती है कि यह एक विशेष माध्यम में अपनी व्यंजकता में स्थिर रहता है, जबकि वास्तविक वस्तुएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। यह चित्र हमारी इंद्रिय चेतना को छूने में समर्थ है। इसकी व्यंजकता को ठीक से परखने के लिए पद्माकर का एक चित्र देखिए। छाजती छबीली छिति छहरी छरा को छोर, भोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर, एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर। पद्माकर का यह वर्णन बहुत कुछ फोटोग्राफी के निकट पहुंच गया है। अंतिम 2 पंक्तियों में यह जड़ हो गया है। पर बिहारी के उपयुक्त चित्र में ब्यौरती और चित्तवती ने चित्र को सजीव बना दिया है। अहे दहेड़ी जिन धरय, जिन तू ले ही उतारी, नीके है छीके छुए, ऐसे ही रही नारी। पहले चित्र की अपेक्षा यह अधिक स्थिर है। अपनी व्यंजना के बावजूद भी इसकी ग्राम्यता एन्द्रियोत्तेजक हो जाती है। यहाँ पर बिहारी की चमत्कारिता देखी जा सकती है, संवेदात्मकता नहीं। पहला, खलित बचन अध खुलित दृग, ललित स्वेद कन ज्योति, अरुण बदन छवि मद छकी, खरी छबीली होती। दूसरा, लखी लखी अखियन अध खुलित, आंग मोरी अंगराए, आधिक उठी लेटती लटकी, आलस भरी जम्हाए। तीसरा, चाले की बातें चली, सुनत सखिन के टोल, गोवे हूँ लोयन हसत, बिकसत जात कपोल। संवेदनामूलक चित्र दूसरे हैं। प्रथम दो मुद्राएं हैं, एक मद विह्वलता की, दूसरी रति श्रांता की। दोनों में कवि की पर्यवेक्षण शक्ति एवं चयन की सूक्ष्मता को देखा जा सकता है। यहाँ पर भी वही बारीकी है जो उस समय के चित्रों और वास्तुकला में प्रकट हुई है। कंजनैनी वाले दोहे में व्यक्त मुद्रा और इनमें व्यक्त मुद्रा में स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। उसे चित्र में भी बांधा जा सकता है, पर ये चित्र की रेखाओं में नहीं अट सकते। इनके लिए चित्र नहीं, चलचित्र की आवश्यकता होगी। रेखाओं में खलित बचन कैसे चित्रित किया जाएगा? आधी खुली हुई आँखों, स्वेद कण की ज्योति, अरुण बदन छवि, मध्य विह्वलता आदि को रेखाओं में बांधा जा सकता है, पर खरी छबीली होती को तो प्रकाश की उचित व्यवस्था द्वारा ही दिखाया जा सकता है। उसी तरह दूसरे दोहे में खलित वचन अध खुलित को तो रेखाओं में आंका जा सकता है, पर लकी लकी अखियन अध खुलती को नहीं। इसमें सभी भंगिमाएं रेखाओं में नहीं अंकित की जा सकती। एक को पढ़ने में दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। दोनों चित्र काफी मनोरम है। तीसरे चित्र में रेखाएं कम हैं, पर द्वितीय पंक्ति प्रभावोत्पक्ता में प्रथम दो चित्रों का अतिक्रमण कर जाती है। इसके अनुभवों में मानसिक प्रतिक्रियाओं को अत्यंत कौशल से ग्रथित कर दिया गया है, जो पाठकों को सहज ही संवेदनापूर्ण बना देता है। खलित वचन और लकी लकी अखियन द्वारा उल्लिखित चित्र अपने आप में पूर्ण है, पर वे किसी विशेष मानसिक भाव को उद्रिक्त नहीं करते, इसलिए वे पाठकों को अनुभूति में बना पाने में असमर्थ हो जाते हैं। दोहा संख्या 1-2 में मात्र भौतिक या शारीरिक तत्वों के अनुसंग में संगठित किया गया है। मनुष्य भावजीवी प्राणी है, उसे केवल भौतिक तत्वों से ही संतोष नहीं होता, वह भाव जगत और अध्यात्म जगत की भी खोज करता है। कलात्मकता सर्जना में संवेदना का सर्वाधिक महत्व है। कला में इसकी अभिव्यक्ति दोहरी होती है। संवेदना किसी वस्तु विशेष के लिए होती है और एक विशेष प्रकार की होती है। दूसरे शब्दों में इसका आविर्भाव किसी प्राणी विशेष के संबंध में होता है, और वैसा होने पर हम एक विशेष प्रकार की मनोदशा में पहुंच जाते हैं। यह संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से भिन्न होती है। संवेदना की भांति ही संवेगों का संबंध भी बाह्य जगत से होता है, पर दोनों का मुख्य अंतर यह है कि एक में निजीपन का अधिक से अधिक परिहार दिखाई पड़ता है, तो दूसरी में निजीपन या व्यक्तित्व का संयोग। एक में बाह्य जगत के संबंध में आने पर जो प्रतिक्रिया होती है वह व्यापक और सार्वजनीन होती है, जबकि दूसरे में वह बहुत कुछ सीमित और निजी होती है। इसलिए संवेग में एक आवेगमयता होती है जो संवेदना में नहीं दिखाई पड़ती, पर उसमें संवेदना की गंभीरता और मर्म स्पर्शता उतनी नहीं आ पाती। पहली को क्लासिकल और दूसरी को रोमांटिक कविता कह सकते हैं। बिहारी क्लासिकल कवि हैं, उनकी अनुभूतियां संवेदात्मक हैं। यह विशेषता उनके उपयुक्त चित्रों में देखी जा सकती है। यह दूसरी बात है कि किसी में अनुभूति अधिक सांद्र हो उठी है तो किसी में कम। यह मात्रा भेद कविता में सर्वत्र ही परिलक्षित होता है। इस मात्रा भेद का विवेचन करने के लिए फिर पीछे लौटना पड़ेगा। दोहा संख्या 3 संख्या 1-2 की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, व्यंजक और प्रभावोत्पादक है। इसके उत्तर में भी यह कहना होगा कि उनमें अभिव्यक्त अनुभूति का संबंध जिस बाह्य जगत से है वह अधिक वास्तविक है, और उन दोनों का अंतर संबंध स्थापन इस ढंग से किया गया है कि पाठकों की चेतना उद्बुद्ध हो उठती है। प्रिय के भावी मिलन की कल्पना मात्र से अभी वास्तविक मिलन नहीं हुआ है, जो कायिक अनुभव उत्पन्न होते हैं वे सभी प्रसन्न भावों को व्यक्त कर देते हैं। ये अनुभव ही चित्र की रंग रेखा है और वे इतने समर्थ हैं कि पाठकों में तुरंत अनुकूल वेदनीय अनुभूति उत्पन्न कर देते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में इसमें कंजन यानी की अपेक्षा अनुभूति का सूक्ष्मतर स्तर आकलित हुआ है।